તારીખ 28/12/1992 શ્રી સમયસર શ્લોક 11 અને 12 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 66
शुद्ध को मुख्य करके कलश रूप काव्य कहते हैं। 14 गाथा पर का ये विषय अनुसार कलश है, वो भी टीका ही है, पद्य में टीका है। गाथा में शुद्ध ने की मुख्यता किया, उसी अनुसार कहते हैं कि नहीं विदधते बद्ध स्पृष्ट भावादयो में स्फुटम उपरी तरंतो अपेति यत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत अवगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम्। श्लोकार्थ, जगत तमेव सम्यक स्वभावम् अनुभवतु। आचार्य महाराज भावना करते हैं कि जगत के सभी प्राणियों इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, स्वभाव का अनुभव करो ऐसा नहीं कह करके सम्यक स्वभाव का अनुभव करो ऐसा कहते हैं। कैसा है स्वभाव? कि सम्यक है। स्वभाव का जो सम्यक रूप है उस रूप में स्वभाव को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। ये जगत के प्राणियों इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। सम्यक मैंने सर्वगुण संपन्न है, कहीं भी किसी तरह की किसी अंश में कोई क्षति जिसमें नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई क्षति नहीं है। और लोकोत्तर गुणों से भरपूर है, परिपूर्ण है। लोकोत्तर गुण मैंने क्या, लौकिक में जिसको गुण कहते हैं यह तो इनके पास, इनके गुण के पास अवगुण है। क्या? जैसे कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, गाली प्रदान करता है या मारता है, तो इसके प्रति कुछ प्रतिकार नहीं करके उसको भी क्षमा प्रदान करना, ये लौकिक गुण है। क्या? ये लौकिक गुण है कि किसी ने कितनी भी बुराई की लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने प्रतिकार तो नहीं किया किंतु ये बुराई करने वाले के प्रति भी उन्होंने सद्भावना व्यक्त की। क्या किया? सद्भावना व्यक्त की, सद्व्यवहार रखा। तो लौकिक में कहेंगे कि वो क्षमावान है, लेकिन ऐसी क्षमा भी जहाँ दोष है। क्या? जिस वितरागता के परिणाम की बराबरी में वितरागता निर्दोष है और ऐसी क्षमा है सो दोष है, ऐसे लोकोत्तर गुणों से जो भरपूर है इस स्वभाव को सम्यक स्वभाव कहने में आता है। ऐसे स्वभाव को सम्यक स्वभाव यहाँ कहते हैं। इसलिए तो श्रीमद् जी ने ये कहा कि सर्वज्ञ को भी सम्यक दृष्टि के रूप में यदि पहचाना जाए तो इसका बहुत महत्फल है। क्या महत्फल है? सर्वज्ञ को सर्वज्ञ के रूप में पहचानना ये तो बहुत कठिन बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि के दृष्टिकोण से इसके सम्यक स्वभाव को, मतलब कहने का ये है कि इनके सम्यक स्वभाव को पहचाना जाए। तो जब भी स्वभाव की पहचान होती है, या सत्पुरुष की पहचान होती है, या मुनिराज की पहचान होती है, या सर्वज्ञ देव की पहचान होती है, तो उसका सम्यक स्वभाव पहचानने में आता है। क्या पहचानने में आता है? उसका सम्यक स्वभाव पहचानने में आता है। ऐसे अपने स्वभाव का अनुभव करो कि जहाँ जिस स्वभाव में यह बद्ध स्पृष्ट आदि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, जो कर्म बंधन की योग्यता वाले परिणाम है। स्पष्ट बद्ध स्पृष्ट आदि भाव मैंने क्या है कि जिसके निमित्त से नया कर्म बंधन होता है, जिस परिणाम के निमित्त से, उस ऐसे जीव के परिणाम को बद्ध स्पृष्ट आदि भाव कहते हैं। ऐसे भाव तो स्पष्टतया फुटम स्पष्टतया स्वभाव के ऊपर तरते हैं। क्या मतलब है इसका? कि मेरा स्वभाव गंभीर स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, स्थिर स्वभाव वो मैं हूँ, और जो भी परिणाम अंश में कुछ विभाव है वो मेरे से भिन्न है, ऊपर तिरते हैं, इसका मतलब मेरे से भिन्न है। जैसे पानी में कोई तेल की बूंद डाली जाए तो क्या होता है कि तेल ऊपर ऊपर तिरता है, पानी में वो मिल जाता नहीं, कितना भी घुल मिला वो मिलेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर रहेगा। इसका मतलब कि वो पानी से भिन्न रहता है, ऊपर तक तिरता है, मतलब क्या है कि पानी से वो भिन्न रहता है। ऐसे सम्यक स्वभाव में अहम बुद्धि होती है। स्वभाव में अहम बुद्धि होने से अपने ही पर्यायांश में होने वाले विभाव को भिन्न देखने में आता है। कैसा भिन्न देखने में आता है कि स्पष्टतया भिन्न देखने में आता है। स्पष्टतया लेते हैं, बिल्कुल भिन्न देखने में आता है, क्योंकि मेरी जाति अलग है और ये विभाव की जाति बिल्कुल अलग है।
पर्याय
पर्याय अंश में होता है, पूरी पर्याय साधक को अशुद्ध नहीं होती, कुछ अंश में अल्प अंश में अशुद्ध होती है, उसको भी वो भिन्न जानते हैं। स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, यानी भिन्न अनुभव करते हैं, अपने स्वभाव में उसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव में तो वे ए भूतार्थ है, ए सत्यार्थ है, वहाँ है ही नहीं। तथापि ऊपर तरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते, उनको स्थान नहीं मिलता स्वभाव में, अपने स्वरूप में उसको स्थान नहीं मिलता, उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उनको उनकी कोई शोभा नहीं है, वो जीव को शोभा नहीं देता है, उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते। क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य है, अनेक रूप है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से ये बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। द्रव्य स्वभाव नित्य है तो ये परिणाम सभी अनित्य है, द्रव्य स्वभाव एक रूप है, चिन्मात्र एकाकार रूप है, तो ये विभिन्न जाति के भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। देखिए क्या अर्थ किया है, प्रतिष्ठां नहीं विदधति, इसका अर्थ क्या किया है? कि ये पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। द्रव्य स्वभाव विज्ञान घन स्वभाव, आनंद घन स्वभाव, इतना घनिष्ठ है कि वहाँ पर्याय का प्रवेश होने का कोई अवकाश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर्याय का प्रवेश होवे। उतना घनिष्ठ स्वभाव है, निविड़ पिंड है, अनंत गुणों का निविड़ पिंड वो स्वभाव है, वहाँ पर्याय का प्रवेश हो ही नहीं सकता। शुद्ध पर्याय का भी प्रवेश नहीं, फिर अशुद्ध पर्याय की तो बात ही क्या क्या बात करें, उनके तो उनकी तो जाति अलग है, लेकिन शुद्ध पर्याय का भी वहाँ प्रवेश नहीं है, ऐसी बात है। तो पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, ऐसा लिखा है ना। शुद्ध शुद्ध का भेद नहीं पड़ा। हाँ क्यों, हाँ प्रदेश अलग अलग को कोई बात नहीं है। कह सकते हैं, सोच समझ करके बराबर कह सकते हैं कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है और स्वभाव के प्रदेश भिन्न है। अगर एक प्रदेश होता तो पर्याय का नाश होने से स्वभाव का भी नाश हो जाता, इसलिए दोनों के प्रदेश भिन्न है। वो प्रमाण का द्रव्य है क्या? कल बात चली थी कि द्रव्य का दो अर्थ है, द्रव्य स्वभाव को भी द्रव्य कहते हैं त्रिकाली को, और पर्याय समेत प्रमाण का विषयभूत जो पदार्थ है उसको भी द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में से पर्याय आती है और द्रव्य में समा जाती है, तरंगवत पानी के तरंग है, पानी में से उत्पन्न होता है, पानी में विलीन होता है, तो एक पूरा द्रव्य की अपेक्षा मान लेना है। त्रिकाली तो अवधगत स्वभाव है, उसमें कोई आना जाना नहीं होता, ऐसा है।
अवलोकन में जो जानक पर्याय का अनुभव होता है और
कारण
स्वभाव
दोनों
भिन्न
है। स्वभाव देखना चाहे तो देख सकते हैं, जानन पर्याय में स्वभाव क्या वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि स्वभाव तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। स्वभाव है वो पर्याय रूप नहीं है, इसलिए वो पर्याय में व्याप्त, पर्याय रूप नहीं होता है, पर्याय में व्याप्त होते हुए भी पर्याय रूप नहीं होता है। क्या पर्याय में व्याप्त का मतलब क्या, क्या पर्याय रूप हो गया क्या, ऐसा नहीं कहने का अभिप्राय है। पर्याय में व्याप्त होते हुए भी पर्याय रूप नहीं होता है, तो वहां से स्वभाव का पता चलता है तो पर्यायत्व छूट जाता है। क्या पर्याय में अपनत्व है वो छूट जाता है, स्वभाव में अपनत्व होते ही पर्याय में अपनत्व छूट जाता है। अगर दोनों एक होता तो ऐसा नहीं बन सकता। ये पर्दे पे चित्र आता है कि नहीं आता है, तो चित्र और पर्दा एक है क्या? एक होता तो चित्र चला जाता और पर्दा भी साथ में चला जाता, चित्र में आग लगती तो आग लग जाती तो पर्दे में भी आग लग जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वहां होने पर भी वहां से भिन्न है, पर्दे पर चित्र होने पर भी पर्दे से भिन्न है कि नहीं है, सीधी बात है। कुछ भी हो, चित्र आखिर में चित्र ही है, पर्दा आखिर में पर्दा ही है, दोनों एक न कभी हुआ है न होने वाला भी है, ऐसी बात है। जैसे स्वभाव स्वभाव ही रहता है और पर्याय पर्याय रहती है, फिर तो द्रव्य में व्याप्त है तो द्रव्य रूप हो जाता है, गुण में व्याप्त है तो गुण रूप हो जाता है, इसलिए अनुभव स्वरूप क्यों कहा? पंचायत ध्यायी में ऐसा लेने का प्रयोजन क्या कि सर्वथा नित्य होता तो क्या वो पर्याय से पर्याय में पाया नहीं जाता, उसका पता ही नहीं चलता। और सर्वथा अनित्य होता, पर्याय रूप होता, तो पर्याय के नाश होने से उनका नाश हो जाता। इसलिए न सर्वथा नित्य है, न सर्वथा अनित्य है, अनुभव स्वरूप है।
पर्याय को नित्य कहा
कह सकते हैं, अपेक्षा से सोच समझ के सब कुछ कह सकते हैं। नित्य मैंने क्षणिक नित्य कहा है, त्रिकाल नित्य तो नहीं कहा। क्या कहा है? कौन सी कथा है? केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी क्षण क्षण वर्ती है। और नित्य मैंने अनादि अनंत नहीं है किंतु सादि अनंत है। नित्य तो अनादि अनंत होता है, लेकिन वो जब से प्रकट होती है तब से अनंत काल तक उसमें कोई बदघट नहीं होती, कमी बेसी नहीं होती। इसलिए उनको उस अपेक्षा से नित्य कही, वरना तो क्षण क्षण में उसका उत्पाद भी है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है। उसका भी क्षण क्षण में उत्पाद भी है और वो अनादि से नहीं है, शादी से है। तो नित्य तो अनादि अनंत होता है, उसको नित्य कहते हैं। लेकिन मर्यादित रूप से मैंने इसकी वैसी की वैसी स्थिति अनंत काल देख करके उसको नित्य कहने में, नित्य रहने वाली है इसलिए नित्य कही ना, ठीक। वो सदा वैसी की वैसी नित्य रहने वाली है इसलिए उनको नित्य कही। अनादि अनंत कहने का अभिप्राय नहीं है और उत्पाद वे नहीं होता है ऐसा भी कहने का अभिप्राय नहीं है। ये मर्यादा रख करके बात है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। पर्याय ऊपर ही रहती है, पर्याय पर्याय में से उत्पन्न होती है और पर्याय पर्याय में विलीन हो जाती है। इनके सत्कारक लिए कि नहीं लिए? यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। जो आया कि नहीं आया? है समन्तात द्योतमानम, उसका अर्थ किया क्या? यह द्रव्य स्वभाव, ऐसा शुद्ध स्वभाव, सम्यक स्वभाव सर्व अवस्थाएं में, सर्व पर्याय में प्रकाशमान है कि नहीं है? है लिया कि नहीं लिया? तो पर्याय रूप नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वभाव स्वभाव ही रहता है, सर्व अवस्था में प्रकाशमान रहता है। आत्मसिद्धि में लिया है, सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जना प्रकट रूप चैतन्यमय एंधान सदा। एंधान पहचानने की निशानी को गुजराती में एंधान कहते हैं। मारवाड़ी में होगा एंधान शब्द? तो पहचानने की जो निशानी होती है, चिन्ह होता है, उसको एंधान कहते हैं। तो उसका चिन्ह कहाँ है? तो उपयोग में, उपयोग लक्षण जीव है, वो उपयोग लक्षण वाला है। उसके पर्याय में चिन्ह है और सभी पर्याय में, एक पर्याय भी बाकी नहीं है, सभी पर्याय में है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। समय सार में है कि नहीं है? ये बात पंचाध्यायी में उतनी नहीं, समय सार में भी है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे। आचार्य महाराज प्रेरणा देते हैं, सारे जगत के जीव प्रति जिसकी परम कारुण्य वृत्ति है, क्या है? जगत से कोई लेना देना तो है ही नहीं, वो तो जगत को दे दी जग की निधियां, कि आपके पैसे वैसे जो भी है वो अपने पास रखो, हमें कुछ चाहिए नहीं। फिर भी सारे जगत के प्रति परम कारुण्य वृत्ति है, जगत के जीवों के दुख को देख करके कहते हैं कि आप काहे को दुखी होते हैं, आपकी सुख निधान सुख निधि तो भीतर में भरी पड़ी है, उसका अनुभव करो, उसमें उसका अनुभव करो। ऐसा आचार्य महाराज प्रेरणा देते हैं। किस प्रकार से अनुभव करो कि मोह रहित होकर के अनुभव करो। मोह सहित इसका अनुभव होता नहीं। क्या मोह का पर्दा स्वयं का सुख का अनुभव करने नहीं देता? इसलिए मोह छोड़ करके जगत के सभी जीव इसका अनुभव करें। हम ऐसा चाहते हैं कि जगत के सभी जीव इसका अनुभव करें। उपसर्ग करने वाला भी इसका अनुभव करे। क्या उपसर्ग करने वाला भी ऐसा शांत स्वभाव का सुख स्वभाव का अनुभव करे। वो भी दुखी है, दुखी है इसलिए उपसर्ग करता है। क्या उनको पीड़ा सही नहीं जाती तभी ऐसा करता है? बहुत पीड़ित है वो, तो उनके प्रति भी करुणा आती है। आचार्य महाराज को तो इनके प्रति भी करुणा आती है। ऐसी बात है,
होना है लेकिन होते नहीं है।
हाँ, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे। मोह मैंने विभ्रम है, विभ्रम को कैसे त्याग करे? कि जहां जहां विभ्रम हो रहा है वहां तो पहले तलाश करे। क्या होता है कि जगत का जो पदार्थ है, जगत की वस्तुएं हैं, इसकी महिमा आती है। जहां तक जगत के पदार्थ का, जगत की वस्तुओं जो जगत में बड़ी बड़ी कहने में आती है, जिसकी महत्ता जगत में होती है, ऐसे जो भी प्रसंग है, ऐसे प्रसंग ऐसे पदार्थ ऐसी वस्तुएं हैं, जहां तक इसकी महिमा अपने आत्मा को रहती है, वहां तक मोह जाने वाला नहीं है। क्यों मोह रहता है? वहां सुख बुद्धि है, और वहां सुख है नहीं, अपना सुख अपने सिवा और जगह है ही नहीं। तो भ्रांति से जगत के पदार्थ में सुख की कल्पना हुई है, यही मोह है। कल्पना का स्वरूप समझ ले तो कल्पना खत्म हो जाएगी। क्या कल्पना का स्वरूप समझ ले तो कल्पना खत्म हो जाएगी। तो जहां भी सुखाभास होता है वहां अपने को जागृत होना है कि ये भाव जो है बिल्कुल गलत है। वहां सुख का नाम निशान भी नहीं है, न सुख का नाम है न कोई सुख का निशान भी है।
कभी कभी तो उदय आता है, जब भी ख्याल आता है, कभी उदय उदय जाने के बाद ख्याल आता है।
तो रस आता है तो ख्याल नहीं आता है। ख्याल क्यों नहीं आता है उस वक्त? क्यों ख्याल नहीं आता है? कि वहां रस आता है, तो उस वक्त के रस को कैसे तोड़े? कि उस वक्त जागृति हो गए तब तो टूटे, बाद में जागृति आएगी तो क्या फायदा? हमारे हाथ में से कांच का बर्तन गिरता है तो टूट जाता है। हम बाद में विचार करें कि ऐसे पकड़े होता तो नहीं नहीं गिरता, लेकिन क्या मतलब इसका? इस तरह से पकड़ा होता तो नहीं गिरता, लेकिन उस तरह से पकड़ा इसलिए गिर गया। तो बाद में इसका विचार क्या काम का? गिर गया तो फूट गया, फूट गया तो फूट गया, नुकसान हो गया तो हो गया। ऐसे बाद में विचार आवे तो कोई काम का नहीं है। नुकसान का विचार बाद में आने से कोई काम का नहीं, उसी वक्त आवे तो फर्क पड़ जाता है। आठों कर्म का उदय चालू ही रहता है, नहीं निरंतर जागृत रहना। उदय निरंतर है, जागृत भी निरंतर रहना है। ये तो प्रसंग की बात करते, कोई प्रसंग बन जाता है, रस आ जाता है, उसको पता नहीं चलता, बाद में विचार आता है अरे इतना रस आ गया, दुकान पर बैठे हैं देखन भाई, और कोई अच्छा ग्राहक आ जाता है रोकड़े से माल लेने वाला है, और एक गुना दो गुना तीन गुना कितना भी पैसा बोलो ले जाता है, भरस आ जाता है कि नहीं आता है? वहाँ लाभ दिखता है, सुख दिखता है, वहाँ रस आ जाता है। छुपा तो नहीं है, प्रगट है, छुपा कहाँ हुआ है, प्रगट है वो तो। पकड़ में ना तो नहीं आता तो वो तो गफलत अपनी है, अपन गाफिल रहते हैं तो पकड़ने में नहीं आता है, बाकी है तो खुला आता है वो तो, कुछ बेस बदल कर नहीं आता, खुद को ही आता है, अपनी जागृति नहीं है तो क्या करें।
लाभ नहीं आता है, नुकसान भी खेल होता है।
हाँ, वो दोनों एक ही बात है, लाभ में हर्षायमान होना, नुकसान में खेद होना, दोनों एक सिक्का के दो बाजू है, दोनों एक रस ही है और कुछ नहीं है। देखिए नुकसान हुआ तो क्या गया आत्मा में से, और लाभ हुआ तो आत्मा में क्या आया, तलाश तो करें। फालतू का सुखी दुखी होता है, कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, और फालतू का सुखी दुखी होता है, जैसे कोई पागल होता है वैसे। पागल को क्या होता है, कभी रोने लगता है, कोई बात नहीं बनती हो तो रोने लगता है, और कभी हंसने लगता है, कोई प्रसंग नहीं है तो भी हंसने लगता है। उनको पूछो भी क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे कुछ होता नहीं, और दुखी होता है और सुखी होता है। हाँ, जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने आप को कभी नुकसान नहीं करते, और अपने आप को नुकसान करते हैं वो बुद्धिमान कहाँ के। हाँ, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत के सभी जीव अनुभव करें, जगत मैंने जगत के सभी जीव अनुभव करें, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। मैंने जीव मोहान्वित होता है, मोह कर्म के उदय में जीव मोहान्वित होता है, तब उनको विभ्रम दशा में अपना सुख का, अपने सुख स्वभाव का यथार्थ अनुभव नहीं होता है। यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धने के विषय रूप शुद्धात्मा का अनुभव करो, यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धने के विषय रूप जो अपना आत्मा है, मूल स्वरूप है, परमात्मा है, उसका अनुभव करो। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। क्या कि ऐसा अनुभव करने पर अपना आत्मदेव, क्या बोले, आत्मा ने कहा आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। भूतम भांतम अभूतम एव रवसात निर्भद्य बन यदि कोई सुबुद्धि, क्या कहा, यदि कोई सम्यक दृष्टि को यहाँ सुबुद्धि कहते हैं, जिसकी कुबुद्धि है वो अपने आप को नुकसान करता है, और जिसकी सुबुद्धि है वो अपना हित करता है, हित नहीं करता। यदि कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व ज्ञान को अपने बल से मैंने पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करें, अंतरंग में देखें, तो यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है, ऐसा व्यक्त निश्चल शाश्वत और नित्य कर्म कलंक कर्दम से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है। एक वचन है पूरा, अल्प विराम है, पूर्ण विराम कहीं बीच में नहीं आता। क्या कहते हैं देखो, कि कोई सम्यक दृष्टि जीव, सुबुद्धि जीव है, जो आत्मा के अभिमुख होकर के, सम्यक दृष्टि कब होता है कि आत्मा के अपने परिणाम को आत्मा के अभिमुख करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तीनों काल के कर्मों को, तीन काल में वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों काल के कर्मों को, कर्म के बंध को, कर्म को मैंने कर्म के बंध को अपने आत्मा से तत्काल, मैंने अभी ही तत्काल, मैंने अभी ही शीघ्र भिन्न करके, मैंने भिन्न अनुभव करके, क्या, क्योंकि भविष्य काल के कर्म तो अभी बंधे ही नहीं, वर्तमान में जो बंध रहे हैं और भूतकाल में जो बंधे हुए संचित कर्म हैं, ये तीनों काल के कर्म से मैं भिन्न हूँ। आगे जो कुछ बंधन होने योग्य है, वर्तमान में जो आ रहे हैं बंधन के लिए आश्रवित हो रहे हैं, और जो भूतकाल में तो बंध चुके हैं, इनसे मैं पूरा पूरा मेरे स्वरूप को भिन्न अनुभव करता हूँ। मैं कर्म बंधन वाला नहीं, वो तो गाथा चली कि आत्मा का स्वरूप अबद्ध स्पष्ट है, कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। तीनों काल के कर्मों से ले लेना, भूतकाल के केवल नहीं लेना, तीनों काल के ले लेना। वर्तमान में ही भिन्न अनुभव करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व को, अज्ञान को, ये अपने भाव परिणाम है, ये परद्रव्य है, उसको भिन्न अनुभव करे, उससे भिन्न अनुभव करे, और अपने मिथ्यात्व अज्ञान को स्वरूप सन्मुखता के पुरुषार्थ से उसको रोक दे, उसको उत्पन्न नहीं होने दे, उसको कहते हैं कि नाश कर दिया, उत्पन्न नहीं होने दिया, उसका मतलब हो गया कि नाश कर दिया। जो अंतरंग में अभ्यास करें, ऐसे अपने आत्मा का अभ्यास करें, अभ्यास करें मैंने देखने का अभ्यास करें, अवलोकन करने का अभ्यास करें, अनुभव करने का अभ्यास करें, अभ्यास करें मैंने बार बार परिणमन करें, उसको अभ्यास कहते हैं। बार बार पुरुषार्थ करें, बार बार अनुभव करने का पुरुषार्थ को यहाँ पर अभ्यास कहने में आता है, ये आता है ना वचनामृत में, पूज्य बैंस कहते हैं कि नायक को नायकपणे अभ्यास करना, नायक स्वरूप आत्मा है, उसको नायक के रूप में नायकपणे अभ्यास, अभ्यास करना मतलब क्या कि भीतर में अनुभव करने का, देखने का अभ्यास करना कि मैं ऐसा हूं, अंतरंग में ऐसा अभ्यास करे, कहाँ अभ्यास करे, अंतरंग में अभ्यास करे, ये अभ्यास, यह अभ्यास बाह्य में होता नहीं, भाई में नहीं होता। इसका मतलब क्या कि शास्त्र का अभ्यास करते हैं उनको व्यवहार से ज्ञानाभ्यास कहने में आता है, क्या शास्त्र के अभ्यास को क्या कहते हैं कि ज्ञानाभ्यास है, लेकिन ये बाह्य ज्ञानाभ्यास है। क्या ये अंतरंग ज्ञानाभ्यास नहीं है? अंतरंग में तो ज्ञान ज्ञान स्वभाव को का अनुवेदन करे, अनुभव करे, उसको अंतरंग ज्ञानाभ्यास कहने में आता है। अनुभव के अभ्यास को यहाँ अनुभव कहते हैं, विकल्प वाले शास्त्र अभ्यास को यहाँ अभ्यास नहीं कहते हैं। सच्चा निश्चय ज्ञान अभ्यास तो वही है, ये तो फिर बाद में उसी के अनुसरण करके जो अभ्यास हुए उसी को व्यवहार कहने में आया है। अंतरंग में मैंने अपने अंतर स्वरूप में अपने को अनुभव करने का पुरुषार्थ करे, बार बार पुरुषार्थ करे, अभ्यास करे, तो क्या अनुभव होगा, क्या दिखने में आएगा कि यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है। क्या कहते हैं हम ये आत्मा को, आत्मा की महिमा को बता नहीं सकते, वाणी से हम बता नहीं सकते। आत्मा की महिमा तो अनुभव गोचर ही होती है, इसका अर्थ घटन राजमल जी ने बहुत सुंदर किया है कि आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक सुख नाम का भी गुण है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा का, आत्मा के सुख का अनुभव होता है, सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है, और वो सुख अनुभव से ही मालूम पड़ता है। जैसे खाने की चीज स्वाद लेने से ही मालूम पड़ती है, जामुन काला होने से कड़वा नहीं होता क्या, और नीम की निम्बोड़ी कहते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में, निम्बोड़ी कहते हैं, हाँ, तो हरी या पीली होने से कोई मीठी नहीं होती, वो तो स्वाद से ही मालूम पड़ती है। ऐसे आत्मा अनुभव से ही इसका सुख क्या है वो मालूम पड़ता है, इसके पहले मालूम पड़ता नहीं है। इसकी महिमा वचन से, कथन से, वाणी से कह सकते नहीं। आत्मानुभव एक गम्य महिमा, अनुभव गम्य महिमा है वो, वचन गम्य महिमा नहीं है, कथन गम्य महिमा नहीं है, वो कहने का अभिप्राय है। तो जब आत्म किसी भी सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन के काल में स्वानुभव होता है तब उनको सुखानुभव होता है, पर तब उनको महिमा आती है कि मेरे आत्मा कितना महिमावंत है, ये सुख के अनुभव से उसकी महिमा पहचानी जाती है, समझी जाती है, इसके पहले इसकी महिमा समझ में नहीं आती है। हाँ, पूरे आत्मा में वो व्याप्त है ही, और पूरे आत्मा में व्याप्त है ऐसा अनुभव होता है, ऐसी बात है। और अनुभव में सुख की प्रधानता है, अनुभव में ज्ञान की प्रधानता नहीं, आनंद की प्रधानता है, सुख की प्रधानता है, शांति की प्रधानता है, दूसरे दूसरे गुण की प्रधानता नहीं है। क्योंकि त्रिंच को तो बहुत कम ज्ञान है, उगाड़ बहुत कम है, लेकिन सुखानुभव होता है, बस खत्म। सुख मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए, और जो भी परिणाम को अंतर्मुख होने में आकर्षण है वो तो सुख के लिए है। परिणाम आसक्त क्यों होता है, हाँ देखिए, अपने परिणाम आसक्त क्यों होता है, सुख का, सुख के कारण तो आसक्त होता है, तो ये सुख का भंडार भरा है, अनंत सुख का भंडार जहाँ है वहाँ परिणाम सुख को मालूम पड़ने से परिणाम वहाँ जाने के लिए रोका जा सकता नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ से परिणाम चलता है, आवेग से परिणाम चलता है, जोर से परिणाम चलता है, इतने जोर से चलता है, इतने जोर से चलता है कि सातवीं नारकी की वेदना उसको रोक सकती नहीं। सातवीं नारकी में नया सम्यक दर्शन होता है क्या? सातवीं नारकी में वहां लेकर के कोई जाते नहीं, संस्कार लेकर के जाते, स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति वाला दूसरा संकेत लेके जाते हैं और वहां नया संकेत होता है। उतनी वेदना है, फिर भी इस वेदना को उल्लंघन करके, उस वेदना को गौण करके आत्मानंद में विराजमान हो जाते हैं। वो नारकी नहीं रहते हैं, लेकिन वो देव हो जाते हैं। हाँ, वो गणधर देव, उसको देव कहते हैं। आता है रत्न करुण श्राव का आचार, गणधर देव उसको देव कहते हैं। हाँ, देव वंदन करते हैं, देव वंदन करे, मनुष्य वंदन करे, सारा जगत वंदन करे। चारों गति के जीव, सारा जगत मैंने, चारों गति के जीव उसको वंदन करते हैं, क्योंकि वंदन के योग्य है इसलिए वंदन करते हैं। धर्म को वहां धर्म प्राप्त है, ऐसे धर्मी को वंदन करने में आता है। ना बिल्कुल, द्रव का शुद्धत्व जाति का परिणमन हो गया। क्या बात लिया है राजमल जी ने, द्रव का शुद्धत्व जाति का परिणमन हो गया। यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है। क्या महिमा छिपी हुई नहीं है, महिमा प्रकट है, लेकिन अनुभव से जानने योग्य, बिना अनुभव से जानने योग्य होती नहीं है। ऐसा व्यक्त है कि अव्यक्त नहीं लिया, 49 की गाथा में अव्यक्त कहेंगे, यहाँ क्या कर कहा? व्यक्त है, अपेक्षा से अव्यक्त कहते हैं, अपेक्षा से उसी को ही व्यक्त कहते हैं। ऐसे व्यक्त है, अनुभव गोचर है, अनुभव में आवे ऐसे ऐसा है, अनुभव के योग्य है, ध्रुव है, निश्चल है, अनादि अनंत है और शाश्वत है। कैसा है अपनी आत्मा? कि ध्रुव है, शाश्वत है और किस नित्य मैंने सदा कर्म कलंक करदम से रहित है। पंख मैंने करदम कादव, पंख को करदम कहते हैं, कादव कहते हैं। सदा ही तीनों काल नित्य मैंने तीनों काल उसको कर्म का कीचड़ लगता नहीं है, कर्म के कलंक रूपी कीचड़ से वो रहित है। मैंने सदा ही पवित्र है। क्या सदा ही? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सदा ही रहित है। ये समयसार की बात चलती ना। कैसा है समयसार शुद्धात्मा? कि द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। समय सारा आयो, समय का सार है, सार मैंने द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। ऐसे पूर्ण पवित्र है, स्वयं है, तीसरा कोई दूसरा तीसरा जीव नहीं है, वो स्वयं है। ऐसा स्तुति करने योग्य, स्तुति करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, जैसा भी कहो, वंदन करने योग्य, पूजन करने योग्य, सब आता है। आगरा में प्रश्न चला था आपने, आत्मदेव की पूजा की जाए कि नहीं पूजा की जाए? अवश्य की जाए, क्यों नहीं की जाए? रूढ़ी नहीं है, रिवाज नहीं है अपने यहाँ, लेकिन कोई उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसमें तो क्या है? सर्वज्ञ देव की, तीर्थंकर आदि की, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की हम पूजा करते हैं, पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं, तो उसमें भी उस आत्मदेव की ही पूजा का तो अभिप्राय है, इनडायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट है, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है उसको। कोई गड़बड़ी चली थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बात चली थी? हाँ, कैसा आत्मदेव की पूजा मत करो, कैसा नहीं
बनाया
गया पूजा, राजमल जी को बनाए, वो आगरा में कोई निषेध किया किसी ने, ऐसे पूजा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए,
वो पूजा करिए तो सब पूजा,
ऐसा नहीं है, रिवाज नहीं है, रूढ़ी नहीं है, इसलिए ऐसा लग जावे। तो कहीं भी रिवाज को बदलो ना तो वहां पर होगा ही होगा, क्योंकि समाज तो रूढ़िगत होता है, जिस रूढ़ी में आ जाता है संप्रदाय, उस रूढ़ी में कुछ भी फेरफार करने को जाओ तो बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, रूढ़ी वाले जीव को बहुत तकलीफ होती है।
तो मूल बात रूढ़ी तो नया क्या चालू करना है, तो उससे देव का ही पूजा है।
हाँ हाँ ठीक है, यहाँ लिया कि नहीं लिया? स्वयं देव आस्ते उसमें से निकाला, स्वयं देव देव में से वो निकाला है, कि अगर आत्मा देव है परम पवित्र तो ये अवश्य स्तुति करने योग्य है ही, पूजा करने योग्य है ही। मोह, अपना मोह, स्वयं का मोह ऐसे आत्मा का निषेध करता है, वो क्या करता है, ऐसा देव का निषेध करता है, वो ऐसा चीज है। पवित्रता को कौन गंदी करेगा, मलिनता, मोह है वो मलिन परिणाम है। भीतर में परम पवित्र साक्षात सिद्ध स्वरूप परम देवाधिदेव आत्मदेव विराजमान है, विराजमान है वो, तो कहा इधर, उसकी अवस्था में मोह की मलिनता है, ये कलंक है। इस कलंक को कलंक नहीं जान करके उसमें जिसको रस आता है, मिठास आती है, वो अपने आप को दुर्गति में ढकेलता है, क्या करें। हाँ, ऐसे महापवित्र देव है उसको कलंकित करते हैं। हाँ, देव तिष्ठे हैं, अच्छा टोन अच्छा है, देव तिष्ठे हैं उसमें टोन अच्छा है। हाँ, हमारा आत्मदेव बैठे हैं, अभी विराजमान है, बैठ गया है, बराबर बैठा हुआ है, अनुपस्थित नहीं है, उसके कोई गैर हाजिरी नहीं है, हाजरा हजूर विराजमान है, क्या आत्मदेव हाजरा हजूर विराजमान है। अन्य मत में तो देव का स्मरण करे तब आवे, क्या भगवान का स्मरण करे तो भगवान का आसन हिलने लगे, भगवान को पता चले कि कोई मेरा भक्त कहीं आपत्ति में आ गया है, मुझे जाना चाहिए, उतनी देर वहां इधर नहीं लगती, इधर तो ज्ञान मात्र कहते ही पूरी सावधानी उसी वक्त उसी वर्तमान में हो जाती है, देव हाजिर हो जाता है ही हाजिर। हाँ, जागतो जीव, जागतो जीव वो से क्या जाए, ऐसी बात है, कभी कभी तो ऐसे वचन सूत्र जैसे निकल जाते हैं। हाँ, कारण परमात्मा खड़ा है, वो कभी चला जाता नहीं, खड़ा है उतना ही नहीं, अपना दरवाजा को खटखटाता है कि तू किवाड़ खोल और दर्शन कर ले, लेकिन ये जीव सुनता नहीं है, उनकी खटखटाहट सुनता नहीं है, बाकी तो कारण परमात्मा खड़ा है और उनको बराबर खोलने के लिए अलार्म दे रहा है। खुद ही इतना मोहान्वित होता है, भान भूल करके इतना मोहान्वित होता है, उतना मोहान्वित होता है कि वो बिल्कुल मुंह फेर लेता है, उल्टा मुंह कर लेता है। क्या करें,
उपाय क्या करें?
उपाय तो पहले तो अपना सुख की, कल्याण की भावना करें, पहले तो
भावना
करें। और अपना जो परमात्मा है इसका वियोग का अनुभव करें। क्या अभी अपना परमात्मा भीतर में विराजमान है, एक लड़की लड़का कोई भी कुटुंब का एक सभ्य का भी वियोग होता है तो रोने लगता है कि नहीं है? निज परमात्मा का वियोग है और उसको रोना नहीं आता है तो उसको उसको दर्शन करना ही नहीं है। इसका मतलब कि उसको अपना देव का दर्शन करना ही नहीं है। अगर उसका वियोग मालूम पड़ता, अनुभव वियोग का अनुभव होता तो संयोग हुए बिना रहता नहीं। ये बात है। देखा तो नहीं तो वियोग तो सही बात नक्की थी कि नहीं? तो वियोग साले छे एम बात छे। हाँ वियोग का दुख होता है क्या है? खाते हैं पीते हैं ओया करके सो जाते हैं, ओया मैंने तृप्त हो गया जैसे बस। तो फिर परमात्मा तो प्रकट होने वाला नहीं है, उसका वियोग भी लगना चाहिए। क्या करे, क्या करना नहीं पड़ता, होना चाहिए। ये सहज होना चाहिए, करना पड़े सो बात नहीं, होना चाहिए। स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव विराजमान है, शाश्वत विराजमान है, ध्रुव विराजमान है। वो खुद ही अपना अनादर, अपना सर्वज्ञ देव का अनादर करता है। क्या उसमें अपना ही देव का अनादर करता है, अनादर करता है तो उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। ये बात है। हाँ, पंच परमेष्ठी का अनादर है, अनंत ज्ञानियों का अनादर है, अनंत शास्त्रों का अनादर है, इनके वचनों का, और अनंत सर्वज्ञ का, अनंत सिद्धों का, अर्यंतों का, सभी का अनादर हो जाता है इसकी आज्ञा नहीं माने है। क्या हाँ, उसका फल ऐसा ही आता है, ऐसा ही आता है। बहुत दुख है, अनंत दुख है। वो
मंदिर भगवान।